नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वॉलीबॉल और भारत के विकास की गाथा के बीच कई समानताएं बताते हुए टीम वर्क, संतुलन और दृढ़ संकल्प को साझा सूत्र बताया है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आज 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
वॉलीबॉल हमें टीम स्पिरिट से जोड़ता है। वॉलीबॉल के हर खिलाड़ी का मंत्र होता है टीम फर्स्ट। हर कोई भले ही अलग अलग स्किल्स का हो, लेकिन सभी प्लेयर्स अपनी टीम की जीत के लिए खेलते हैं। और मैं तो भारत की डेवलपमेंट स्टोरी और वॉलीबॉल में भी बहुत सी बातें कॉमन देखता हूँ। वॉलीबॉल हमें सिखाती है कि कोई भी जीत अकेले नहीं होती। हमारी जीत हमारे कोऑर्डिनेशन, हमारे विश्वास और हमारी टीम की तत्परता पर निर्भर होती।
प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 के बाद खेलों में भारत का प्रदर्शन लगातार बेहतर हुआ है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने खेल के क्षेत्र में कई सुधार किए हैं।
स्पोर्ट सेक्टर में भी सरकार ने बड़े रिफॉर्म्स किए। नेशनल स्पोर्ट गवर्नेंस एक्ट और खेलो भारत नीति 2025, इस प्रकार के प्रावधानों से सही टैलेंट को अवसर मिलेगा। खेल संगठनों में ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। देश के युवाओं को स्पोर्ट्स और एजुकेशन दोनों ही क्षेत्रों में एक साथ आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा।
कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वर्ष 2025 में भारत का चावल उत्पादन 150 मिलियन टन से अधिक रहा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की विकसित बेहतर गुणवत्ता वाली 25 फसलों की 184 नई किस्मों के उद्घाटन के अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि भारत चावल उत्पादन के मामले में चीन को पीछे छोड़कर पहले नंबर पर पहुंच गया है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मनरेगा भ्रष्टाचार का एक पर्याय बन चुका था, जहां श्रमिकों को दरकिनार करके उनका शोषण किया जाता था। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि कांग्रेस विकसित भारत जी रामजी कानून को लेकर जनता को गुमराह कर रही है। श्री चौहान ने कहा कि विकसित भारत जी रामजी कानून श्रमिकों के हित में है। गृहमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने आज पार्टी कार्यकर्ताओं से तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में बड़ी जीत सुनिश्चित करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि एनडीए गठबंधन देश भर के विधानसभा चुनावों में लगातार जीत हासिल कर रहा है और उम्मीद है कि तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में भी यही सिलसिला जारी रहेगा। आज तमिलनाडु के पुदुकोटई में एक जनसभा में उन्होंने कहा कि सत्ताधारी दल वंशवादी शासन पर आधारित है और भ्रष्टाचार का पर्याय है, इसलिए राज्य की जनता को इसे नकार देना चाहिए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज रात फ्रांस और लग्जमबर्ग की सरकारी यात्रा पर रवाना हो गए हैं। डॉक्टर जयशंकर पेरिस में फ्रांस के नेताओं से मुलाकात करेंगे और विदेश मंत्री जियां नोएल बैरोट से बातचीत करेंगे। दोनों नेता भारत फ्रांस रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत हुई प्रगति तथा वैश्विक महत्व के मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि डॉक्टर जयशंकर 31वें फ्रांस एम्बेसेडर सम्मेलन में मुख्य अतिथि होंगे और सम्मेलन को संबोधित करेंगे। दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र कल से शुरू हो रहा है। 4 दिन का ये सत्र 8 जनवरी तक चलेगा। सत्र में प्रदूषण, पर्यावरण और शीश महल परियोजना तथा दिल्ली जल बोर्ड से संबंधित CAG की रिपोर्ट सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। सत्र से पहले आज दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने विधानसभा परिसर का निरीक्षण किया। इस दौरान श्री गुप्ता ने कहा कि शीतकालीन सत्र का मुख्य उद्देश्य सदन की मर्यादा बनाए रखते हुए कार्यवाही का सुचारू संचालन सुनिश्चित करना होगा। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी संयुक्त अरब अमीरात और श्रीलंका की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। मित्र देशों के साथ रक्षा सहयोग मजबूत करने के कार्यक्रमों का ये एक हिस्सा है। जनरल द्विवेदी 2 दिन की यात्रा के पहले चरण में संयुक्त अरब अमीरात में रहेंगे। भारत ने वेनेजुएला में हाल के घटनाक्रम पर गहरी चिंता व्यक्त की है और सभी संबंधित पक्षों से संवाद के माध्यम से मुद्दों का समाधान करने का आह्वान किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत वेनेजुएला की स्थिति पर पैनी नजर रखे हुए है। भारत ने वेनेजुएला के लोगों के हितों और सुरक्षा के प्रति समर्थन भी व्यक्त किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।